ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार ने बाजुरा और हुमला जिलों की सीमा संबंधी अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित की समिति। बंद पड़े सभी उद्योगों को फिर से संचालन में लाने की तैयारी में है सरकार, उद्योग मंत्री गौरी कुमार यादव का कथन। सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कर बनाए गए पोखरा के फिरके नदी क्षेत्र की संरचनाओं को हटाने का अभियान शुरू। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 24 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने बाजुरा और हुमला जिलों की सीमा से जुड़े तकनीकी पक्षों का अध्ययन कर प्रतिवेदन पेश करने के लिए नापी विभाग के उप महानिदेशक सुशील डंगोल के संयोजकत्व में समिति गठित की है। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामला एवं सामान्य प्रशासन मंत्री प्रतिभा रावल की अध्यक्षता में आज सिंह दरबार में हुई बैठक में यह निर्णय लिया। समिति में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय, गृह मंत्रालय, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय, भूमि व्यवस्था मंत्रालय सहित कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों तथा मंत्रिपरिषद कार्यालयों से एक एक प्रतिनिधि सदस्य रहेंगे। नापी विभाग के एक निदेशक को समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने हुमला और बाजुरा जिलों के नागरिकों से संयम बरतने की अपील की है। मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि हुमला और बाजुरा के सीमा क्षेत्र में हुई घटना की सत्यता की जांच के लिए पुलिस वरिष्ठ उपरीक्षक के संयोजकत्व में एक जांच टोली गठित की गई है। मंत्रालय ने आम नागरिकों की जान माल की सुरक्षा और सीमा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता दोहराई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के सचिव के संयोजकत्व में रक्षा सचिव सहित सभी सुरक्षा निकायों के प्रमुख एवं प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आज आयोजित आकस्मिक बैठक ने जांच टोली गठन का निर्णय लिया। टोली को तत्काल घटनास्थल पर रवाना होकर प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्रालय पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया और हुमला तथा बाजुरा दोनों जिलों से नेपाल प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल की विशेष टीमों को घटनास्थल पर परिचालन किया जा चुका है। पोखरा महानगरपालिका ने शहर के बीचों बीच बहने वाली फिरके नदी के क्षेत्र में बनी अवैध संरचनाओं को आज से हटाना शुरू कर दिया है। महानगर प्रमुख धनराज आचार्य ने बताया कि सार्वजनिक भूमि अतिक्रमित कर बनाए गए ढांचों को हटाने के लिए पहले ही सूचना जारी की जा चुकी है। इसके बाद आज से 3 स्थानों से अभियान चलाकर क्षेत्र खाली कराने का कार्य शुरू किया गया है। सार्वजनिक सूचना जारी होने के बाद कुछ संस्थाओं ने अपने ढांचे स्वयं खाली कर दिए हैं। महानगरपालिका के अनुसार फिरके नदी क्षेत्र में 97 अस्थायी और 35 स्थायी संरचनाएं बनाई गई थीं। इसके अलावा नदी के ऊपर 10 अस्थायी और 18 स्थायी संस्थागत संरचनाएं भी पाई गई हैं। सुकुम्बासी बस्तियों को हटाए जाने के बाद काठमांडू महानगरपालिका ने इस वर्ष नदी जनित आपदाओं की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद जताई है। महानगरपालिका वार्ड नंबर 11, 14, 31 और 32 के आसपास नदी किनारे बसे लोगों को हटाए जाने के बाद बाढ़ और नदी जनित जोखिम में कमी आने की उम्मीद की गई है। महानगर के नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विष्णु प्रसाद जोशी ने ये जानकारी दी। हालांकि उन्होंने सामा खुशी से खाड़ी पाखा तक के क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता बताई। जोशी के अनुसार वर्षा ऋतु में होने वाली अन्य जलजनित घटनाओं को कम करने के लिए महानगरपालिका ने जोखिम वाले स्थानों की पहचान कर रणनीतिक योजना भी तैयार की है। उन्होंने बताया कि शहरी आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए पूर्व तैयारी, आपदा के समय आवश्यक प्रबंधन तथा आपदा के बाद पुनर्स्थापना कार्यों को ध्यान में रखते हुए वार्ड और समुदाय स्तर पर क्षमता विकास तथा विभिन्न निकायों के बीच समन्वय की योजना बनाई गई है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने कहा कि सरकार बंद पड़े सभी उद्योगों को पुनः संचालन में लाने की तैयारी कर रही है। कभी बंद तो कभी संचालन की स्थिति में से गुजर रहे हेटौड़ा सीमेंट उद्योग का आज निरीक्षण करते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने हेटौड़ा सीमेंट उद्योग की समस्याओं को गंभीरता से लिया है और शीघ्र ही सभी समस्याओं का समाधान कर उद्योग को नियमित संचालन में लाने का वातावरण तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने अपने प्रथम राष्ट्रीय महाधिवेशन की तैयारी संबंधी कार्यतालिका को स्वीकृति देते हुए इसकी जानकारी प्रदेश और जिला अध्यक्षों को दी है। पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अनुसार आगामी 15 जेठ तक सभी 70 जिलों और 7 प्रदेशों में निर्वाचन समितियों का गठन पूरा करना होगा। इसी प्रकार 20 जेठ तक स्थानीय और जिला अधिवेशन की रिपोर्ट संकलित करने तथा 30 जेठ तक जिला अधिवेशन एवं निर्वाचन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के उप प्रमुख राम गुरुंग ने जानकारी दी कि 25 जेठ तक महाधिवेशन प्रतिनिधियों की नामावली प्रस्तुत करनी होगी, वहीं आगामी 5 आषाढ़ तक प्रदेश अधिवेशन में निर्वाचित पदाधिकारियों का विवरण और इलेक्ट्रॉनिक मतदान संबंधी चर्चा पूरी की जाएगी। रासोपा ने आगामी 7, 8 और 9 आषाढ़ को चितवन में अपना पहला राष्ट्रीय महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दै छ?
सबै राम्रै चल्दै छ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि नागरिकों की विभिन्न समस्याओं और सरोकारों को सरकार क्रमशः संबोधित करती जाएगी। काठमांडू निर्वाचन क्षेत्र नंबर 5 में आज आयोजित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल ने स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गई सड़क, नाली, बिजली और पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकतम पहल करने की प्रतिबद्धता जताई। उसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद एवं मंत्री पोखरेल ने चुनाव के दौरान प्रत्येक महीने एक सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में आज काठमांडू महानगर पालिका 4 स्थित विशाल मिलन केंद्र में पहला सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकार के प्रवक्ता भी रहे मंत्री पोखरेल ने स्पष्ट किया कि सरकार जनता की बात सुनकर ही आगे बढ़ने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय की प्राथमिकताओं तथा अब तक हुए कार्यों की जानकारी भी स्थानीय नागरिकों को दी। मंत्रालय की कार्य प्रगति प्रस्तुत करते हुए मंत्री पोखरेल ने कहा कि देशभर के सभी सामुदायिक विद्यालयों की भौतिक पूर्वाधार स्थिति का मूल्यांकन कर अगले वर्ष से प्राथमिकता के आधार पर बजट और अन्य संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक सभी विद्यालयों को समान रूप से बजट भेजने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हुई, इसलिए आगामी वर्ष से प्रत्येक सामुदायिक विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटित किया जाएगा। उपसभामुख रूबी कुमारी ठाकुर ने कहा है कि वे मध्य प्रदेश में व्याप्त दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ निरंतर संघर्ष करती रहेंगी। सरलही की चंद्रनगर गांव पालिका द्वारा आज आयोजित बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपसभामुख ठाकुर ने कहा कि बाल विवाह और दहेज प्रथा केवल मध्येश ही नहीं बल्कि पूरे देश से समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटियों को बोझ मानने वाले लैंगिक विभेद की सोच के कारण बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं कायम हैं। मधेश समाज को बेटियों का सम्मान करना सीखना होगा। नेपाल के 3 दिवसीय दौरे पर आई ब्रिटेन की इंडो पैसिफिक और समानता मंत्री सीमा मल्होत्रा ने कहा है कि ब्रिटेन नेपाल में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार और तकनीकी शिक्षा के विस्तार में सहयोग करेगा। आज नेपाल ब्रिटेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित नेपाल के लिए ब्रिटेन की शैक्षिक साझेदारी का दायरा विषयक उच्चस्तरीय चर्चा कार्यक्रम में मंत्री मल्होत्रा ने कहा कि नेपाल और ब्रिटेन के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने में शिक्षा सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। दौरे के दौरान मंत्री मल्होत्रा ने अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम बागले, विदेश मंत्री शिशिर खनाल, शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य सहित विभिन्न नेताओं से मुलाकात की। नेपाल के लिए ब्रिटेन के राजदूत रॉब फेन ने जानकारी दी कि इन मुलाकातों में दीर्घकालीन निवेश और बहुक्षेत्रीय सहयोग के विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। छिन्नलता गीत पुरस्कार गुठी ने वरिष्ठ गायक मदन कृष्ण श्रेष्ठ को विशेष सम्मान प्रदान करने का निर्णय लिया है। गुठी का अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ वासुदेव त्रिपाठी की अध्यक्षता में सम्पन्न साधारण सभा ने यह निर्णय लिया। गुठी के सचिव दिनेश अधिकारी के अनुसार गीत लेखन की श्रेणी में डॉ नवराज लमसाल, संगीत रचना में किरण कंडेल और गायन में विमला राय को पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस वर्ष का लोकप्रिय युवा प्रतिभा पुरस्कार सारिका घिमरे को देने का भी निर्णय लिया गया है। पुरस्कार और सम्मान समारोह गुठी की संस्थापक तथा गीतकार स्वर्गीय रमोला देवी शाह छिन्नलता की जयंती के अवसर पर आगामी 9 श्रावण को आयोजित किया जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में चमन फाटक के पास आज रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 24 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके की वजह से एक ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए जबकि 2 डिब्बे पलट गए। चश्मदीदों के अनुसार धमाका इतना तेज था कि रेलवे ट्रैक के पास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए जबकि आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। सेना और पुलिस बल हादसे वाली जगह पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने अभी तक धमाके की वजह या हताहतों की संख्या के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। रेल मंत्री मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने क्वेटा में हुए धमाके की कड़ी निंदा की है। रेलवे प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने कहा, क्वेटा कैंट से आने वाली एक शटल ट्रेन चमन फाटक के पास धमाके की चपेट में आ गई। उन्होंने बताया कि धमाके की वजह से इंजन समेत 3 डिब्बे पटरी से उतर गए जबकि 2 डिब्बे पलट गए। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने बाजुरा और हुमला जिलों की सीमा संबंधी अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए गठित की समिति। बंद पड़े सभी उद्योगों को फिर से संचालन में लाने की तैयारी में है सरकार, उद्योग मंत्री गौरी कुमारी यादव का कथन। सार्वजनिक भूमि अतिक्रमण कर बनाए गए पोखरा के फिरके नदी क्षेत्र की संरचनाओं को हटाने का अभियान शुरू। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 24 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।